खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो जी। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जरा जोरदार तालियां दें। आए हम खुदा के कलाम में से अपनी तरबियत और नसीहत के लिए चंद एक बातों पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद खुदा कितना भला है और उसकी शफकत क्या है जी, अबदी है। सो मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से, आज हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 20वां बाब, उसकी हम पहली चंद आयात पर गौर करेंगे। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है जी, फकीयों फरीसियों से सवालों जवाब करते हुए उनसे बड़ी ही उम्दा बात पूछता है और सवालों जवाब बहुत अच्छे हैं। सवालों जवाब क्या हैं जी, बहुत अच्छे हैं। जब हम सवाल करते हैं तो उसके पीछे जो ख्याल या बुनियाद है तो वो क्या है जी, कि हम सच जानना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। खुदावंद खुदा के कलाम में से जब हम देखते हैं किसी भी सवाल को, अगर हम सवाल पूछेंगे जी कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को किस तरह पैदा किया, तो हम क्या होंगे जी, बाइबल मुकद्दस की तरफ मुतवज्जा होंगे और खुदा की जात के बारे में तलाश करना शुरू कर देंगे कि ये कौन ऐसी हस्ती है जिसने क्या किया जी, ना जमीन का वजूद था, ना कोई शक्ल व सूरत थी, उस पर क्या कर दिया जी, सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। और अगर हम सवाल करें कि यीशु कौन है, तो फिर हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि यीशु मसीह वो है जिसके बारे में नबियों ने क्या की थी जी, नबूवत की थी। जवाब में आएगा कि नबियों ने नबूवत की थी, उसके बारे में कहा गया था वो किस तरह पैदा होगा, वो किस तरह जिंदगी बसर करेगा, वो क्या करेगा, वो किस तरह कलाम करेगा, उसकी जिंदगी में से क्या कुछ वकू में आएगा। तो हम एक सवाल से एक बात को क्या है जी, सीख कर आगे ही आगे गहरे और गहरे तौर पर बढ़ते जाते हैं। सो सवाल करना अच्छा है। जैसे कल रात सवाल किया गया कि मूसा की कुल उम्र कितनी थी जब उसने वफात पाई, तो जवाब क्या है जी, बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो 120 साल का था जब उसने वफात पाई। जब उसने वफात पाई, जब वो मर गया, और इस पर जब आगे सीखना शुरू करते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है कि उसको पता था। जी हाँ, मूसा पर खुदा ने वाजिया कर दिया था कि तू किस जगह पर क्या है जी, वफात पाएगा, और वो 120 साल की उम्र में वफात पा गया, इस दुनिया को छोड़ गया। सो एक सवाल से हम क्या है जी, पूरी जिंदगी मूसा की देख सकते हैं कि अगर उसकी 120 साल की जिंदगी थी तो इससे मुराद है कि उसने क्या क्या किया। सवाल उठेगा ना जी कि उसने 120 साल की उम्र में क्या किया। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने जवाब दिया है जी मूसा की उम्र 120 साल की थी, तो उसने क्या किया। सो आपकी मालूमात के लिए मैं चाहूंगा कि हम अगर उस पर गौर करें तो जवाब क्या निकलेगा जी, मूसा की कुल उम्र 120 थी, और अगर उसे तीन हिस्सों में बांटा जाए तो क्या बनेंगे जी, 40-40 साल का हिस्सा बनेगा। और जब हम देखते हैं तो पहले 40 साल जब मूसा पानी से उठाया गया और फरौन के घर ले जाया गया, उसने कहां पर है जी, पहले 40 साल महल में गुजारे कि वो तालीम ले, वो हर एक बात को सीखे, और हर एक बात में वो उसने मिस्र की तमाम क्या है जी, तालीम हासिल की कि वो, क्योंकि वो फराउन के घर में रहता था और फराउन की बेटी का क्या है जी, बेटा बनकर उसने जिंदगी बसर की। तो आपको पता चल गया, अच्छा पहले 40 साल वो महल में रहा। सो दूसरा सवाल आपके होगा जहन में, फिर अगले 40 साल उसने कहां पर गुजारे। जब हम खरूज की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है जब वो एक दिन बाहर गया और उसने एक मिस्री को यहूदी पर जुल्म करते या सताते देखा तो क्या किया जी, उसे मार दिया। मूसा उस दिन भागा और क्या करता है जी, वो बियाबान में चला जाता है और अगले 40 साल तक वो क्या करता है जी, भेड़ें चराता है। अपने ससुर के घर में उस बियाबान में वो क्या करता है, भेड़े चराता है। उसकी वहां पर क्या होती है जी, शादी होती है, बच्चे होते हैं, कारोबार करता है और वहां पर खुदा से कलाम करता है। कहां पर जी, जलती हुई झाड़ी में। जलती हुई झाड़ी में खुदा से कहता है कि जा जाकर मेरे लोगों को क्या कर, आजाद कर। सो बियाबान में उसने किसने साल गुजार दिए जी, 40 साल। मेरे साथ कहें कितने साल जी, 40 साल। सो पहले 40 साल मूसा कहां पर था जी, महल में, फराउन के घर में। दूसरे 40 साल मूसा कहां पर था जी, बियाबान में। और अगले 40 साल को देखते हैं, जब खुदा ने उसे कलाम किया, वो वापस आता है और वापस आकर क्या करता है, 40 साल उसे लगे कि वो लोगों को मिस्र से निकाल कर क्या करता है जी, फिर वादा की सरजमीन की तरफ लेकर जाता है, जहां पर क्या किया खुदा ने, उनके लिए अजीब अजीब काम किए। खुदा ने उसे कसरत से इस्तेमाल किया, बहुत से मौजज़े हुए। और आखिरी 40 साल के दौरान क्या है जी, जब उसने बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल कर दरियाए यर्दन के पार उस वादा की सरजमीन पर ले गया, जहां पर क्या खुदा ने कहा था कि तुम्हारे लिए दूध और शहर की क्या है जी, नदियां हैं, नहरें हैं। वो जगह है जहां पर तुम्हें क्या है जी, मैं ले जाना चाहता हूं कि ताकि तुम वहां पर रहो। तो क्या हो गया जी, मूसा के अगले 40 साल कहां पर गुजरे हैं जी, खुदा के लोगों की क़ियादत और रहनुमाई करते हुए। सो 40 और 40 कितने होते हैं जी, 80। और 80 में 40 डाल दें तो कितने बनते हैं जी, 120 साल। याद रखें, जब कोई सवाल किया जाता है उसके पीछे बहुत गहरा तल्लक है, और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। मेरे साथ देखें लूका की इंजील उसका 20वां बाब। जब हम लूका की इंजील उसका 20वां बाब देखते हैं, तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है और वो क्यों सवाल करता है। उन दिनों में एक रोज ऐसा हुआ जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काहिन और फकी बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझे ये इख्तियार दिया है। यहां पर वो यीशु मसीह से क्या करते हैं जी, सवाल करते हैं। और ये सवाल वो गलत सवाल है जो उन्होंने यीशु पर किया। और क्या करते हैं जी, यीशु से पूछते हैं कि किस इख्तियार से तू तालीम देता है और किस इख्तियार से ये सारे काम करता है। और इन कामों में क्या है जी, वो सारी बातें आ जाती हैं, अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलने की कुव्वत, गुंगों को बोलने की। और वो कहता है तूफान थम जाए, थम जाता है। वो कहता है जाओ तुम्हारे गुनाह माफ हुए, ए लड़के उठ, ए मुर्दा उठ। और वो तमाम जो काम है जी, वो सारे यहां पर उस पर इसहार कर रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु हमें बता तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है। सो यीशु मसीह ने उनको जवाब क्या दिया, यीशु मसीह उनको जवाब देता है जब हम 3 आयत में पढ़ते हैं, उसने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ। यीशु ने जब उनसे सवाल किया तो यीशु मसीह उनसे पूछना चाहता है कि तुम क्या समझते हो, तुम्हें क्या हिकमत और दनाई है, तुम्हारा कहने का मकसद और सवाल पूछने का पीछे वजह क्या है। क्योंकि सवाल दो तरह पूछे जाते हैं जी, आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि पादरी साहब इसका क्या मतलब है, ये क्या है जी, एक रवैया है जिसमें आप सीखना चाहते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। दूसरा सवाल ऐसा होगा जिसे तंजिया कहते हैं, ओए तू मेनू दस, आवाज बदल गई, लहजा बदल गया और सवाल की क्या है जी, नोयत भी बदल गई। अगर हम कहेंगे, मैं आपसे कहूं, बेटी मुझे ये बताओ कि आप के नाम का क्या मतलब है, तो बेटी आगे से जवाब कहेगी, भाई साहब मुझे पता नहीं या मुझे पता है। और अगर मैं उसी बेटी को या किसी बेटे को कहा, ओए तू मिन दासोए, तेरे नाम का मतलब की है, ओए और तू मैनू दस, सारा सवाल बदल गया, लहजा बदल गया। सो यहां पर यीशु मसीह से वो सवाल करते हैं, कहते हैं कि तू हमें बता कि इन सारे कामों को, तालीम को दे रहा है, खुशखबरी का पैगाम दे रहा है, यीशु किस इख्तियार से और किसने तुझे ये इख्तियार दिया है। दूसरे लफ्जों में फकी, फरीसी और बुजुर्ग जो उस दौर में थे, वो अपने आप को क्या समझते थे जी, कि हम मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं जिसने शरीयत हमको दी है, इसलिए हमारे इख्तियार और हमारे क्या है जी मखसूस किए बगैर कोई भी बंदा हैकल में या कोई भी बंदा शहर में तालीम नहीं दे सकता। वो अपने आप को क्या समझते थे जी, रूहानी ठेकेदार, कि अगर कोई काम करेगा तो हमसे पूछेगा, अगर कोई काम करेगा तो हमारे मतहद करेगा। और वो यीशु पर सवाल करते हैं कि यीशु हमें बता, तुझे किसने ये इख्तियार दे दिया। दूसरे लफ्जों में वो यीशु पर जो सवाल कर रहे हैं, वो दरअसल यीशु को कह रहे हैं, ओ तू कौन हुन्ना वा, तेरी की मजाल के साढ़े तो पूछे बगैर तू तालीम दवे, खुशखबरी का पैगाम दवे। तो यहां पर जब यीशु से उन्होंने ये सवाल किया है और सवाल यीशु मसीह के ऊपर जब किया गया, तो यीशु क्या जानता है जी, दिलों को जानता है, जानता है ना यीशु दिलों को, यीशु दिलों को जानता है, वो शुरू से आखिर तक जानता है और हर एक इलम की बात उससे छुपी नहीं। सो यीशु उनके रवैये से वाकिफ था कि इन बुजुर्गों ने, फकीयों, फरीसियों ने उस पर ये सवाल जो किया है, सरदारों ने, वो क्या है जी, सीखने की तलक से नहीं किया, या वो ये नहीं चाहते कि हमें सिखाया जाएगा। वो क्या चाह रहे हैं जी, सिखाने की बजाय, सीखने की बजाय यीशु पर सवाल उठाते हैं कि हम तुझसे ज्यादा इलम या इख्तियार वाले हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, अच्छा भाई, मुझे पता है तुम्हारे सवाल का मकसद क्या है और उसके पीछे सोच क्या है। यीशु ने उनसे एक सवाल किया और वो सवाल क्या है, चौथी आयत में लिखा है, मुझे बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। जब ये सवाल यीशु मसीह ने फकीयों, फरीसियों और सरदारों से किया, तो इसमें दो बातें आ गई। यीशु मसीह उनके इलम को भी चेक करना चाहता है कि उनका तालीमी इलम शरीयत के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक कितना गहरा है, क्योंकि पुराने अहदनामा में कहा गया था कि मैं अपने आगे किसको भेजूंगा जी, एलिया को भेजूंगा, और उस पर क्या होगी जी, एलिया की रूह होगी। और यशायाह ने क्या कहा था जी, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, सहरा में क्या करो जी, खुदावन की राह तैयार करो, और जो घाटी खाली है वो भर दी जाएगी, जो ऊंचा है वो नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो दुरुस्त किया जाएगा, और ना हमवार हमवार किया जाएगा। सो ये नबूत क्या थी जी, यूहन्ना के लिए, कि यूहन्ना आएगा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले क्या करने के लिए जी, उसकी राह तैयार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जिसके तुम मुंतजर हो वो आने वाला है, मैं उसकी जूतियों के तस्मा को खोलने के काबल भी नहीं हूं, मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना उनको कहता है, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको रूह से बपतिस्मा देगा। सो जब यीशु ने फरीसियों से, सरदारों से, फकीयों से और बुजुर्गों से ये सवाल किया, तो क्या कहा, तुम मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। सो यीशु मसीह उनका इल्म इलाही का इल्म चेक कर रहा है कि वो मूसा की शरीयत से, नबियों के सहीफों से कितनी वाकफियत रखते हैं, और दूसरी बात वो मुझे बताएंगे कि वो किस इख्तियार से इस बात का इनकार करते हैं। सो आगे क्या लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, जब यीशु ने सवाल किया, जब हम किसी से सवाल करते हैं तो जवाब क्या होता है जी, या तो मैं जवाब दूंगा या मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। जब हम जवाब देते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जी हाँ, मुझे इसके बारे में समझ है। और जब हम जवाब नहीं देते तो हम क्या करते हैं जी, बहुत दफा सोचते हैं जहां तो मुझे समझ नहीं और यहां मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने जवाब दिया तो हो सकता है जो मुझे जवाब देना पड़े वो काम मैंने ना किया हो। यहां पर यही हुआ, वो आपस में कहने लगे। उन्होंने आपस में कहा, अगर हम कहें आसमान की तरफ से था, आसमान की तरफ से, तो वो कहेंगे तुमने क्यों उसका यकीन ना किया। सरदार फकी और तमाम जो मजहबी रहनुमा है, वो जब इससे से सवाल किया गया है तो वो आपस में खुद ही उसका जवाब जानते हुए क्या करते हैं जी, इनकार कर रहे हैं। उनको पता था कि यहन्ना क्या है जी, कोई आम बंदा नहीं था। उसके लिए कहा गया था कि वो ऊंट के बालों की क्या है जी, पोशाक पहनेगा, वो बचपन ही से खुदा का नजीर होगा। नजीर से मुराद यानी के नजर किया हुआ, मखसूस किया हुआ। उनको पता था कि इसके बारे में जिक्रिया जो क्या था जी, काहिनों में से काहिन था, वो क्या है जी, नबूवत की रूह से ये बात कहता है। खुदा के फरिश्ते ने उस पर जाहर होकर कहा था, वो सब जानते थे लेकिन जानबूझकर अनजान बन गए, क्योंकि वो दरअसल क्या कर रहे थे जी, अपने रोब और अपने इख्तियार में खुदा के इख्तियार और उसके बेटे के इख्तियार का इनकार कर रहे थे। बहुत दफा हम भी ऐसा ही करते हैं, जानबूझकर खुदा के इख्तियार का इनकार करते हैं, सच को जानते हुए भी भोले बन जाते हैं और जानबूझकर जो काम करना चाहिए उसे नहीं करते और अपने आप में क्या है जी, अपने आप को गलत बना लेते हैं। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में कहा, अगर हम कहें कि आसमान की तरफ से, तो वो कहेंगे तू तो क्यों उसका यकीन नहीं किया। अगर सरदार फकी फरीसी कह देते कि हाँ हाँ यसु, तूने हमसे सवाल किया है, हाँ उसका बपतिस्मा खुदा की तरफ से था और उसको खुदा ने चुना था कि वो नबी बने, कि वो बियाबान की आवाज बने, वो यसु तेरे लिए रास्ता तैयार करे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, यकीन करने की बजाय क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और यहां हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा के भेजे हुए को इनकार किया और खुदा उनका कलाम क्या कहता है, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। दूसरे लफ्जों में, जो मेरे भेजे हुए का यकीन करता है वो मेरा यकीन करता है। इन फकीयों, फरीसियों, सरदार काहिनों ने खुदा के भेजे हुए का यकीन नहीं किया, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि आसमान की तरफ से था, तो वो कहेंगे कि तुमने उसका यकीन क्यों ना किया। और दूसरी बात उनके जहन में जो चल रही है, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से था, तो सब लोग हमको क्या करेंगे जी, पत्थर मारेंगे, संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यहन्ना क्या था जी, नबी था। सो यसु मसीह से उन्होंने सवाल किया, यसु मसीह के इख्तियार के बारे में जानबूझकर, कि कोई बंदा ऐसे काम नहीं कर सकता। याद है वो रात जिस रात सरदार कौन है जी, निकुदीमस यसु के पास आकर कहता है और कहता है, ऐ खुदावन, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है और जो काम तू करता है किसी इंसान से हो नहीं सकते अगर खुदा उसके साथ ना हो। उन्होंने क्या किया, उसका यकीन नहीं किया। और यहां पर क्या करते हैं जी, यहन्ना का भी यकीन ना किया, क्योंकि अगर वो कह देते कि हां जी हम यकीन करते हैं कि उसका बपतिस्मा या वो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इंसान की तरफ से था, तो उनको पता था कि लोग क्या करेंगे, उनको पत्थर मारना शुरू कर देंगे कि तुम्हें इलम ही नहीं है। तुमने लबास पहने हुए हैं रब्बियों के सरदारों के, लेकिन तुमको कख का पता नहीं है। इसलिए वो अपने आप में सवाल करते हैं, अगर हमने ये जवाब दे दिया तो इससे जाहिर हो जाएगा कि हमने यकीन नहीं किया। अगर हमने दूसरा जवाब दे दिया तो लोग कहेंगे हम तो उसे नबी मानते थे, तुमने क्यों उसे नबी ना माना। कैसी बात है जी, एक सवाल पर कितनी बातें हमें सीखने को मिल रही हैं। सवाल किया करें, जब सवाल किया जाए तो उसका जवाब याद रखा करें। जब आपको जवाब याद रहेगा तो आप एक मिनट में किसी को एक पल में अपनी उंगलियों पर मूसा की जिंदगी गिनकर बयान कर सकते हैं और लोग हैरान हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे या आप किसी को बताएं कि क्या भी कभी आपने सोचा कि मूसा की जिंदगी को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, और सुनने वाला कहेगा हां मुझे बताओ। सो यहां पर जब यस्सु ने उनसे सवाल किया उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो दोनों तरह से ही गलत थे। और यहां पर उन्होंने क्या किया, खुदा के भेजे हुए जिसे खुदा ने इख्तियार दिया था उसे भी नहीं माना और खुदा का जो नबी था उसे भी नहीं माना। सो भेजने वाले को भी नहीं उन्होंने यकीन किया और जो भेजा गया था उसका भी यकीन ना किया। और यीशु मसीह ने उनको जवाब में क्या कहा, पस उन्होंने जवाब दिया हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। वो जानबूझकर यहां फिर बुद्धू बन गए कि हम शर्मिंदा ना हो और जवाब देना पसंद ना किया। और यीशु ने फिर उनको कौन सा जवाब दिया, यीशु ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। वो जानते थे कि ये खुदा की तरफ से है, लेकिन यीशु मसीह ने भी उनको कहा अगर तुम इकरार नहीं करोगे, अगर तुम अपना रवैया नहीं बदलोगे, अगर तुम खाकसारी नहीं करोगे तो मैं भी तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। जब जब कोई कौम, कबीला, मुल्क, शहर, खानदान खुदावन यीशु मसीह के कलाम को और उसको अपनी जिंदगी में ताबेदारी से कबूल नहीं करता तो फिर खुदा उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। और ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही क्या है जी, संजीदा और दुख की बात है खुदा के दिल के लिए, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावन यीशु चाहता था कि ये भी जो तालीम यीशु दे रहा था, जो खुशखबरी का पैगाम यीशु दे रहा था आने वाली अपनी इस बादशाही के बारे में, वो उसमें शरीक हो। लेकिन उन्होंने क्या किया जी, गरूर किया, घमंड किया। आज आपको दुनिया में भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो सच को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने दिल को तब्दील नहीं करते। इसलिए हमें इसमें से क्या सीखना है, हमारे लिए सवाल है यीशु हमारे लिए कौन है, वो कौन है हमारे लिए, हम उसके इख्तियार को किस तरह लेते हैं। कहीं हम यीशु को सिर्फ नबी ही तो नहीं समझते, या फिर सिर्फ ये नहीं कि वो तारीख इंसानी में क्या था जी, मौजज़े दिखाने वाला था, या सिर्फ वो एक उस्ताद था, या फिर हम जबूर 23 की तरह कह सकते हैं खुदावंद मेरा चौपान है। हमें यीशु को शख्सी तौर पर जानने की जरूरत है कि वो हमारा चौपान है, वो हमारा उस्ताद है, वो हमारा निगेबान है, वो खुदा का नबी है, वो मौजज़ात करने वाली खुदा की कुदरत है, वो है जो उसने कहा है कि मैं हूं जो हूं मेरा नाम है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब नहीं दिया क्योंकि वो जवाब लेना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को क्या कर दिया, ना कर दिया। आए हम खुदा के हुजूर झुकें। जब जब यीशु मसीह का कलाम हमसे सवाल करे तो हम उसे अपने दिल में लें और खास कर याद रखें کہ یسوع مسیح ہمارا چوپان نگہبان چرواہا ہے۔ خدا باپ آج کی صبح سب کو چھو، بڑی برکت دے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔